शांति, गुड मॉर्निंग। एक सीरीज हम कर रहे हैं द आर्ट ऑफ लविंग। उस सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है लव फॉर प्योरिटी, पवित्रता से प्रेम। एक अव्यक्त वाणी है 14 नवंबर 1987 की, उसमें बाप दादा ने पवित्रता के बारे में बताया कि पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख और शांति की जननी कहते हैं। कभी भी किसी भी कारण से दुख का अगर अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। इन तीन लाइंस में ही जैसे कि बाबा ने हमारे पूरे जीवन का, पूरे कल्प का जैसे कि एक मकसद, एक लक्ष्य दे दिया, और जिसका आधार है पवित्रता। पूरा कल्प माना कि मेरा हर एक जन्म, इस जन्म का शायद लक्ष्य हो सकता है कि बाप समान बनना, लक्ष्मी नारायण बनना, पर जब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ लाइफ, हम पर्पस ऑफ बर्थ नहीं कहते, जन्म का लक्ष्य नहीं कहते, जीवन का लक्ष्य कहते हैं। जब हम जीवन की बात करते हैं तो माना कि सारे जन्म। एक ट्रैफिक कंट्रोल में गीत है, 5:30 बजे वाला जो ट्रैफिक कंट्रोल है, वह है जन्म जन्म की प्यास बुझा ले पावन बनकर आज। पावन माना संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता से ही मेरे हर जन्म की प्यास बुझ सकती है, आत्मा की प्यास, सुख और शांति, और सुख और शांति की जननी पवित्रता। सिर्फ एक जन्म का पवित्रता की धारणा का अगर मेरा लक्ष्य है, मकसद है, मेरा पूरा कल्प सुख और शांति से भर सकता है। बाबा केवल 21 जन्मों का वर्षा देने नहीं आया, ना केवल एक जन्म का, ना 21 जन्मों का, बल्कि पूरे कल्प का। दादी जानकी से एक लंदन की बहन ने उनसे पूछा, दादी की जीवन के बारे में जानने के बाद दादी से पूछा कि दादी, मुझे तो लगता है कि ज्ञान में आने से पहले भी आपके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण थे, बहुत डिवाइन वर्च्यू से। उन्होंने दादी के एक दो दिव्य गुणों की बात भी की। दादी ने कहा कि ये पिछले कल्प में बाबा ने दिए थे, वो स्टॉक बचा हुआ था। तो आप देख रहे हो कि हम कितना स्टॉक अभी जो जमा करेंगे संगम पर वो पूरे कल्प चलेगा, और उस स्टॉक को जो हम जमा करते हैं उतना कर पाएंगे जितना आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा होगी। अब ये सारी बातें तो हम बहुत बार सुनते आए ना, पर क्या होता है कि पवित्रता के मार्ग पर चलते चलते कितनी बार हम फिर भी विचलित हो जाते हैं, डगमग हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? आदत पड़ गई है, अपवित्रता, साइट सीन देखने की आदत। हाँ जी, पवित्रता के महत्व को ना समझना, उसको भूल जाना, विस्मृति हो जाना। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जो पवित्रता का महत्व है वो हम कितनी बार समझ नहीं पाते, और दूसरी बात शायद छोटी छोटी बातें हैं पवित्रता को लेकर, क्योंकि बाबा बताते ना कि विधि से ही सिद्धि है। कई बार जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं पवित्रता को लेकर वो शायद हमें क्लियर नहीं है। अगर हमें उसकी भी समझ में आ जाए बात कि कैसे कैसे जो छोटी छोटी आदतें अगर हम डालें जिससे कि मेरा पवित्रता की जो परसेंटेज है, प्योरिटी की जो परसेंटेज है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो आज के सेशन में हम कुछ उन बातों पर नजर डालेंगे कि क्या वो हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जो कि मुश्किल नहीं है, पर अगर हम उसको हर रोज डेली बेसिस पे करना शुरू करें धीरे धीरे आत्मा के अंदर प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। जहां तक महत्व की बात है, 21 जन्म तो निकल जाएंगे सुख और शांति में, इंटरेस्टिंग तो लाइफ तब बनेगी जब सेकेंड हाफ ऑफ द कल्प शुरू होगा, जब द्वापर और कलयुग शुरू होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने कपड़े खरीदे, एक देखने में दोनों सेम है, एक अच्छी क्वालिटी का, एक इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जब देखेंगे ना, जब दोनों नए हैं तो फर्क समझ में नहीं आएगा। आप 5-6-10 बार धुलाई करेंगे, जो अच्छी क्वालिटी वाला है वो अपनी क्वालिटी को रिटेन करके रखेगा, संभाल कर रखेगा, जो दूसरे वाला है। उसी प्रकार आत्मा, आत्मा की जो क्वालिटी माना प्योरिटी, जितनी प्योरिटी की धारणा, धुलाई माना जन्म, जितने जन्म हम लेते रहेंगे माना आत्मा की धुलाई हो रही है। जिस आत्मा ने प्योरिटी का स्टॉक जमा किया वो पूरे कल्प उसको रिटेन कर पाएगी, और जिसने नहीं किया कुछ धुलाई के बाद फेड आउट हो जाएगी, है ना, दुख और अशांति महसूस करने लगेगी। इसलिए बाबा ने बोला कि जो पवित्रता है वो सुख और शांति की जननी है। हम पवित्रता का स्टॉक जमा करके रखें, सुख और शांति तो वो एक उसका बाय प्रोडक्ट है, एक रिजल्ट है। तो महत्व तो हम समझ गए, अब हम बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिसको हम या तो बदल सकते हैं या धारण कर सकते हैं जिससे कि प्योरिटी की परसेंटेज हमारे दिन ब दिन बढ़ती जाए। ठीक है, इजी इजी चीजें, कोई मुश्किल नहीं है। चार चीजों पे ध्यान डालेंगे आज। पहली चीज है धन को लेके प्योरिटी, धन में प्योरिटी। अपवित्र धन किसको कहा जाएगा, किस धन को अपवित्र कहा जाएगा? गलत रास्ते से कमाया हुआ धन। हाँ जी, रिश्वत का धन, ब्राइब, धोखे से कमाया हुआ धन, झूठ बोलकर कमाया हुआ धन। अगर हम बिजनेस करते हैं अपने कर्मचारियों को जितना वो डिजर्व करते हैं उतना ना देकर उस प्रॉफिट को अपने पास रखकर, वो वाला धन। स्मार्ट बनकर कमाया हुआ धन, स्मार्ट समझते हैं, एक बेटर वर्ड है किसी और चीज के लिए, एक्स्ट्रा स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, क्लेवर बनकर। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम समझ ही सकते हैं ना कि किस धन को अपवित्र कह सकते हैं। कितनी बार क्या होता है, अपना धन बचाकर किसी और का धन लगवा देना किसी भी रीति से, है ना, اپنا نہ لگایا, چلو ان کا لگ رہا ہے پھر کیا ہوا, اپنا تو بچا. کسی بھی طریقے سے ہیرا پھیری ادھر ادھر ہے نا, اس طریقے سے جو دھن بچایا یا دھن کمایا وہ اپوترتا کی شرینی میں آ جائے گا. جوا, لاٹری, کتنی بار ہم کہتے ہیں اگر ہم لاٹری جیت گئے تو بابا کا سینٹر کھولیں گے, $1 million کی لاٹری ہے, اگر لگ گئی تھوڑا سا پرسنٹیج اپنے پاس رکھیں گے پھر باقی سیوا میں لگائیں گے. لیگل ہے, لیگل ہے وہاں. بابا کو ایسا دھن چاہیے, ایسا دھن فلی بھوت ہوگا. اس لیے بابا کو سچا دل چاہیے, سچا دل, سچے دل سے کمایا ہوا کچھ پیسہ بھی چلے گا, وہ پیسہ بھی سفل کریں گے تو بہت کچھ مل جائے گا. تو جو بھی دھن کمائیں اس میں پیورٹی سمائی ہو, وہی دھن سکھ اور شانتی کا کارن بنے گا. اگر جو بھی دوسرے والا دھن ہے وہ تو ایک نہ ایک دن ویسے ہی پھسل جانا ہے. تو اس لیے جو دھن کی پیورٹی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ دھن جو بھی ہم کماتے ہیں وہ ہم کیوں کما رہے ہیں, کس کا دھن ہے نا, تو اس دھن میں آسکتی نہ ہو کہ میرا پن نہ ہو کہ میرا ہے. ایگو آ جاتا ہے بہت جلدی نا, اس لیے وہ دھن میرا نہیں ہے, باباز ہے نا. تو بابا کے کارے میں لگانا ہے, کتنے پیور کارے میں ہم لگا رہے ہیں, ہم یگے میں لگا رہے ہیں وہ دھن, اس کی پیورٹی کا لیول کتنا ہائی ہونا چاہیے. اس دھن میں آسکتی نہ ہوں, میرا پن نہ ہوں, دھن پیور ہو. اور اس کی ایک بہت بڑا کارن ہے, ہم وہ دھیرے دھیرے سمجھیں گے بیسی سیشن میں, پر دھن کی پیورٹی بہت میٹر کرتی ہے. کتنی بار خاص کر ودیشوں میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, اگر آپ کما نہیں سکتے ہیں, آپ کو کچھ پرابلم ہے, کچھ بھی ہے, گورنمنٹ سے آپ کو ڈول ملتی ہے. کتنی بار ہم برہمن لائف میں چلتے ہیں بہت اچھے سے پر اس چیز میں چوک کر جاتے ہیں, کسی نہ کسی کارن سے, کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر, کوئی نہ کوئی کیس کریٹ کر کر ہم وہ دھن گورنمنٹ سے ڈول لیتے ہیں. اس کو شاید یہاں پہ بھی ملتی ہوگی, پر ہاں جی سوشل سیکیورٹی ہے وہاں پہ ہم سینٹرل لنک سے بولتے ہیں کہ جو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے وہ سب دھن. اگر واقعی میں آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اٹس فائن, پر ایلیجیبلٹی کریٹ کرنا ہے نا وہ امپیور ہے, وہ اپوتر دھن. لوگ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہاں تو دیکھو ہر جگہ کوئی نہ کوئی طریقے ہیں گورنمنٹ سے پیسے نکلوانے کے نا. تو آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم سب جانتے ہیں کہ اپوتر دھن کس کو کہا جاتا ہے, اس میں چوک نہ ہو. بہت سارے ریزن ہم بنا سکتے ہیں, ہاں ریزننگ بھی یہی ہے نا, کافی سارے ریزنز ہم کریٹ کر سکتے ہیں, بٹ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں اس میں پوترتا سمائی ہے, سچائی سمائی ہو. اب ہم ہمیشہ کیوں ہیرا پھیری سے دھن کمانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے یا تو ہمارے پاس دھن نہیں ہے, شاید اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی ریتی سے کمائیں, یا پھر جو دھن ہمارے پاس ہے اس میں سنتشٹتا نہیں ہے, اسنتشٹتا ہے جس کی وجہ سے بچ جائے گا تو بابا کے کارے. ہاں وہی نا, ایکچولی کارن تو ہم بہت سارے دیتے ہیں کہ بابا کے کارے میں لگ جائے گا بچ جائے گا, پر اندر وجہ کچھ اور ہے. ہاں جی تو اسنتشٹتا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم صبح جو بھی اپنے آپ کو سامان دیتے ہیں ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں اس لسٹ میں. صبح اپنے آپ کو کہیں جتنا مجھے چاہیے اس سے بڑھ کر ہے, آئی ہیو انف منی ٹو سپورٹ مائی سیلف اینڈ دا فیملی, جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں जब हम अपने आप को ये सुबह सम्मान देते हैं, जब सुबह हम इस चीज को अपने आप को कहते हैं आई हैव इनफ, लाइफ में संतुष्टता आती है। और जब संतुष्टता आती है तो हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं है। ये हम करके देखें, प्रैक्टिस करके देखें इस बात की, आई हैव इनफ, जितना मुझे चाहिए उससे बढ़कर है। सेकेंड चीज, धन के बाद आता है अन्न। अन्न की जो प्योरिटी है उस पर तो हमारा विशेष अटेंशन रहता है ब्राह्मण परिवार में। बहुत सारी बाबा के पॉइंट्स हैं, क्लासेस हैं जो हम सुनते हैं, तो हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि प्योर अन्न, पवित्र अन्न किसको कहा जाता है। हम सब क्लियर हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्यों धन की बात की गई। अगर अपवित्र धन है, उस अपवित्र धन से अगर अन्न खरीदा जाए तो वो अन्न कभी पवित्र हो नहीं सकता, है ना। तो क्योंकि उसका बीज, वो जो धन है वो इम्प्योर है, वो अपवित्र है, तो उस अन्न को कैसे प्योरीफाई करेंगे। इसलिए धन की प्योरिटी बहुत जरूरी है, ताकि हमारा अन्न जो है वो प्योर हो सके। उसके लिए हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक और चीज ऐड कर सकते हैं प्योरीफाई करने के लिए अन्न को। हम बाजार से कोई भी चीज खरीद कर लाएं, अन्न या कोई भी घर की सेंटर की कोई भी वस्तु ना, लाके बाबा के कमरे में सीधा, किचन में जाने से पहले, लिविंग एरिया कुछ भी कहीं पे भी जाने से पहले, बाथरूम में जाने से पहले, चाहे सोप लेकर आए, चाहे ब्रेड, कुछ भी लेकर आए, पहले बाबा के कमरे में, वहां पे सारा सामान इकट्ठा करें जो भी लाएं, और वहां बैठकर योग करें। जब वहां पे उसको प्योरीफाई करते हैं, उसके बाद जब हम योग के बाद उस सामान को जब हम अपने किचन में या कहीं पर लेके जाएं, तो इस वृत्ति से कि अब बाबा से ले रहे हैं, बाबा के भंडारे से ले रहे हैं, तो उसमें आसक्ति नहीं आएगी, मेरापन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि किससे लिया, बाबा से लिया। जब हम यहां पे मधुबन आते हैं, कहीं पे भी जाते हैं ऐसे सेंटर्स पे, ORC जाएं या कोई भी रिट्रीट सेंटर, जहां पे हमें भोजन मिलता है, उसमें ये तो नहीं होता ना मेरा है, क्या फीलिंग होती है अंदर से कि बाबा से लेकर खा रहे हैं ना। तो क्या ये चीज हम घर पे सेंटर्स पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, कितना आसान है। तो हमारी वृत्ति में ये होना चाहिए कि किचन का हर एक सामान, कमरे का हर एक सामान, बाथरूम का, कहीं का भी जो भी सामान, बाबा के भंडारे से लिया गया है, बिलोंग्स टू बाबा, नॉट मी। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, मन से करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, पर जब हम ऑन अ फिजिकल लेवल वो सारा सामान, बाबा का कमरा अगर है या जो भी आपका स्पेस हो, वहां पे लाके रखेंगे, और जब वो लेंगे ना वहां से, तब तो वृत्ति धीरे धीरे बदलती है, बहुत फर्क पड़ता है। तो हम वो ध्यान रखें। एक और बात, कितनी बार क्या होता है ऑफिस में या अपने कार्यस्थल पर कुछ चीजें हमें दी जाती हैं एम्प्लॉयज को खाने के लिए, फ्रूट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। कितनी बार हम सोचते हैं चलो इसको रखो बैग में, घर लेके जाते हैं, दूध होता है, ये सब चीजें मिलती हैं, है ना। ऑफिस ने वो चीज वहां अपने एम्प्लॉयज को खाने के लिए ऑफिस में प्रोवाइड की है। वो ऑफिस जो है ग्रॉसरी स्टोर नहीं है कि वो आपको घर के लिए सामान दे रहे हैं ना। हम वो चीजें घर पे उठा के ले आते हैं, और ऐसे हम बहुत सारी जगह से कर सकते हैं ना। अपवित्र अन्न, उसको वो तो चोरी का हुआ ना, चोरी नहीं कहेंगे उसको, वो अपवित्रता उसमें, उसको अपवित्र नहीं कर सकते। तो ऑफिस से कई बार कॉफी, चाय, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, जो भी कई बार हमें मिलती है ना सब चीजें, हाँ हमारी वृत्ति में तो घर ले जाते हैं। हाँ देखो, अगर आपको दिया गया है ना, और आप उस टाइम नहीं खाना चाहते, आप उसको रख लें, स्वीकार करें, रखें, जब मर्जी खाएं घर आके। पर मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे सामान रखा हुआ है, कोई आपको देख नहीं रहा है, आप आराम से लेके जा सकते हैं। हम वहां से उठाते हैं, हम घर लेके आते हैं कि चलो बाजार जाके सेब खरीदने नहीं पड़ेंगे, रखे तो हैं यहां पे ऑफिस में। अपवित्र अन्न है ना। सेंटर पे कितनी बार भोग बनता है, थर्सडेज को, सैटरडेज को, जो भी, हर एक सेंटर का अपना अपना। वहां पे पैक किया और घर। अगर तो निमित्त भाई बहन जो वहां पर हैं, अगर वो देते हैं, हाँ वो अच्छी बात है, पर कहीं ऐसा ना हो कि प्लेट में ज्यादा ले लें। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल टेंडेंसी हमारे ये अंदर मन में क्या चल रहा है ना, मैं वो बात कर रहा हूं कि मन में क्या चलता रहता है ना, कि मन में ये चल रहा है कि घर लेके जाएं, घर लेके जाएं, घर लेके जाएं, कल के लिए, शाम के लिए, आपके लिए नहीं जनरली। कोई हाँ, कोई कुमार है जैसे, एनीवे किसी के साथ भी हो सकता है, पर बात है कि अपनी चेकिंग की, सेल्फ चेकिंग की, कि हमारे मन में ये सब चीजें ना हो, क्योंकि वो जो ऐसे वाला अन्न है ना, तो उसको बाबा तो स्वीकार करेगा नहीं, बाबा स्वीकार करेगा नहीं, तो वो पवित्र बनेगा कैसे, वो बन नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार अगर घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी हम जाएं, अगर किसी का भोजन सात्विक ना हो और उसको देखकर हम मुंह बना लें, है ना, या फिर एक वो अंदर की रिजेक्शन की जो वाइब्रेशन है ना, कि ये कैसा खाते हैं, क्या है ये है वो है, समझ नहीं है, कुछ भी खाते हैं, कई बार हमारी वाइब्रेशन वैसी, हमारी वाइब उनका इम्प्योर भोजन देखकर हमारा मन इम्प्योर हो जाता है, किसकी गलती। अब वो जो इम्प्योर वाइब्रेशन हैं वो इम्प्योर वायुमंडल बनाती हैं, और उस इम्प्योरिटी की जो वायुमंडल जो हमने क्रिएट किया, हमारी वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग, उससे वो जो आत्मा है वो क्या कंज्यूम करेगी, इम्प्योर फूड और इम्प्योर वाइब्रेशंस। तो क्या हम विश्व कल्याणी कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे ना। तो इसलिए जो किसी का भी भोजन अगर सात्विक ना भी हो, पर हमारी वाइब्रेशन सात्विक हो, प्योर हो, ये हम अनुभव से कह सकते हैं कि जब हमारी वाइब्रेशंस प्योर होती हैं, तो घर पे या जो बाकी के जो एम्प्लॉयज है, जो आसपास के जो मेरे कलीग्स हैं, कोई भी है जो मेरे आसपास, धीरे धीरे वो प्योर वाइब्रेशंस को कंज्यूम करती है आत्मा, धीरे धीरे उसका भोजन भी प्योर बनने लगता है। ऐसा होता है, हमें करके देखना है, अपनी वाइब्रेशंस को हमें अपवित्र नहीं करना है किसी के अन्न को, किसी के भोजन को देखकर। प्योरिटी का वायुमंडल जो क्रिएट होता है, आत्मा के पास ये इनकेपेबिलिटी, वो उसको कंज्यूम करेगी वाइब्रेशंस को, उस वायुमंडल को वो सोक करेगी और उसके अंदर परिवर्तन आएगा, लोग वेजिटेरियन बन जाते हैं आपके बिना कुछ कहे। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमें करके देखना है सिर्फ। ठीक है जी, कर सकते हैं, पॉसिबल, वेजिटेरियन बन जाते हैं लोग, वीगन बन जाते हैं, आप अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहते। बाय हुक और बाय क्रुक। अच्छा, तो इसके लिए सुबह के लिए एक और सामान, अन्न की प्योरिफिकेशन के लिए, सुबह उठने सबसे पहले क्या सांस लेंगे ना, कंज्यूम, तो ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस टू बाबा। जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो बाबा के भंडारे से कर रहे हैं, सब कुछ बाबा का, बाबा को सुबह उठ के थैंक यू, किसी भी चीज में ओनरशिप नहीं, मेरापन नहीं कि ये मेरा है, वो चीज नहीं, बहुत प्योरिफिकेशन अपने आप हो जाएगी। ये जरा जरा सी चीजें हैं, इससे बहुत प्योरिटी आ जाएगी। तीसरी बात, तो धन हो गया, अन्न हो गया, फिर तीसरा है जैसा अन्न वैसा मन। अब मन की इम्प्योरिटी के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आज हम सिर्फ एक की बात करते हैं, मन की इम्प्योरिटी कितनी बार, मन के अंदर अपवित्रता क्यों आ जाती है कितनी बार, किसी और की बुराई को देखकर, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं भी किया, हम ऐसा सोचने की वो ऐसा सोच रहा है, तो अपने मन को इम्प्योर कर लेते हैं। कोई वाकई में कुछ गलत कर रहा है तो उसको देखकर देखो कैसे हैं, 10 साल हो गए इनको चलते हुए ज्ञान में, 20 साल हो गए, ये देखो आज भी यही हाल है इनके, तो हमारे क्या हाल है, उनके तो हाल है, है ना। मैं आपको एक अपनी लाइफ से एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो फोर्थ ईयर लास्ट ईयर था, एक ही शौक था मेरा ना कि टॉप करना है यूनिवर्सिटी में। तो 3 साल मैं करता रहा, चौथे साल मेरे एक फ्रेंड ने कहा, और उस टाइम ना फिर कॉलेज में कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, मेरी थर्ड ईयर में प्लेसमेंट हो गई थी तो सब कुछ फ्यूचर सेट नजर आ रहा था। फोर्थ ईयर में एक फ्रेंड ने कहा, और वो फ्रेंड मुझे कब से कह रहा था, तो फोर्थ ईयर में उसने कहा लास्ट ईयर में कि आशीष बाद में बहुत दुख होगा कि कॉलेज में कुछ फन नहीं किया, तो कभी तो कोई क्लास बंक करके देखो कि क्या उसका आनंद है, तो मूवी देखने चलते हैं। बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं, जैसे हम कितनी बार क्या होता है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर हमें लगता है कि शायद हमें इतना नहीं पता, एक बार जो ये कह रहे हैं करके देखते हैं ना, क्योंकि हमें खुद को क्लैरिटी नहीं होती है। तो क्लास बंक की, 5-6 लोग ऑलरेडी बाहर पहुंच चुके थे कॉलेज के, मैं और मेरा फ्रेंड कॉलेज बंक करके हम बाहर निकल रहे थे, क्लास के जैसे ही बाहर निकले और अंदर से दिल धक 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 धक, जैसे ही कॉलेज के बाहर क्लास के बाहर निकले उस कॉलेज का चेयरमैन आ गया, और ये देखो हमारी वाइब्रेशन, एक तो वैसे ही नर्वस है ना, अब वो चेयरमैन सर जो आ गए उसके वो कहते हैं कि कहां जा रहे हो, तो क्लास का टाइम है, जब नर्वस होते हैं ना तो सच निकल जाता है, तो सच निकल गया। फिर कहा, उन्होंने पूछा कौन कौन जा रहे हो, तो मैंने कहा वो 6 लोग वहां खड़े, 2 हमें, तो वो तो शायद बच जाते, पर हम सभी 8-10 लोग थे, सब पकड़े गए और हम 8-10 लोगों को इनडेफिनेट टाइम, माना कि बिना कुछ डिफाइन किए कि भाई तुम सस्पेंड किए जाते हो कॉलेज से, और हमारा नाम जो मेन नोटिस बोर्ड है कॉलेज का उसमें डिफॉल्टर्स की लिस्ट में लगा दिए कि ये कॉलेज के डिफॉल्टर्स हैं। कितनी बड़ी बात थी खासकर मेरे लिए, उसमें भी सबसे ऊपर मेरा नाम था, उसमें भी मैं फर्स्ट हूं, तो तो उसमें नोटिस बोर्ड पे लग गया। अब जस्ट इमेजिन कि अब कोई नया व्यक्ति आता है और उस नोटिस बोर्ड पे उन 10 लोगों के नाम को पढ़ता है, और वो मन में क्या इमेज क्रिएट करेगा कि ये 10 बच्चे जो हैं ये डिफॉल्टर्स हैं, ऐसे बच्चे होने नहीं चाहिए, माँ बाप का नाम खराब कर, बहुत कुछ सोच सकता है ना कोई भी। उसका ऐसा सोचना क्या करेक्ट है, कि उसका ऐसा सोचना करेक्ट है इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव? क्या वो वाकई में, चलो अगर मैं सिर्फ आशीष की बात की जाए, क्या वो डिफॉल्टर है? वो तो 3 साल से टॉप कर रहा है यूनिवर्सिटी में। जो व्यक्ति आज आया जिसने आशीष की हिस्ट्री नहीं देखी, उसने सिर्फ एक कर्म देखा और उसके बेसिस पे उसने अपने मन में बोला कि ये डिफॉल्टर है, ऐसे बच्चे होने नहीं चाहिए किसी के। आज हमारी लाइफ में कोई आया, उसका एक कर्म हमने देखा, उसको हमने 1 साल देखा, उसको हमने 10 साल देखा, और हमने उसको लेबल कर दिया कि ये डिफॉल्टर है। हमें ना उसकी हिस्ट्री पता है, ना उसका पास्ट पता है, कुछ भी नहीं, पर हमने उसको अपने अंदर लेबल कर दिया, इनकरेक्ट है, सही नहीं है, सही नहीं है ये, है ना। एक टेररिस्ट अटैक हुआ था तो वो टेररिस्ट पकड़ा गया, उस टेररिस्ट को पूरे मीडिया में बहुत कुछ सुनाया जाता, दुनिया के सभी लोग उसको बुरा भला कह रहे थे, मीडिया ने उसके पिताजी को ढूंढ निकाला कहीं से और उनका इंटरव्यू हुआ। उसके पिताजी ने कहा, जब ये छोटा था तो और बच्चों की तरह था, सबको बहुत प्यार करता था और सभी का बहुत प्यारा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, बड़ा होकर ना जाने किसके इन्फ्लुएंस में आ गया और इसने ये गलत काम कर दिया। अब आप देखें दुनिया का पर्सपेक्टिव और पिताजी का पर्सपेक्टिव क्यों डिफरेंट है, क्योंकि पिताजी ने हिस्ट्री देखी, उसका पास्ट देखा है। पिताजी ने ये नहीं कहा कि कर्म सही था, पिताजी ने कहा कर्म गलत था, पर ये कहा कि इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है ना। तो बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाने आए, हमें हर एक आत्मा का पास्ट पता है, खासकर ब्राह्मण आत्मा का, क्या था उनका ओरिजिनल स्वरूप, तो हम सो का पार्ट तो हमने किया ही ना, वो क्या थे और क्या बनेंगे। अगर हम त्रिकालदर्शी होकर हर किसी को देखेंगे तो हमारे मन में इम्प्योरिटी आएगी नहीं, अपवित्रता का भाव उत्पन्न नहीं होगा अगर मैं त्रिकालदर्शी होकर देखूं। नाले की बूंद आज काली है, आज बदबूदार है, पर मुझे पता है जब वो आई थी ना तो प्योर थी, जब उस पर सूरज की किरण पड़ेगी वो प्योर होकर वापस आएगी। हम सभी वही नहीं है, कलयुग में तो जीरे थे जब बाबा हमें मिला, जब वो सूरज की किरण पड़ी, तो हमें उसी रीति से देखना है। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है झरमुई झुकमुई, गॉसिपिंग ना, पर उसके लिए एक बहुत अच्छी चाबी है हमारे पास ना उससे बचने के लिए, मेड इन पंजाब, ठीक है। वो चाबी का नाम है, उसको मैं हिंदी में बताऊंगा पर उसका पंजाबी नाम है सानू की। मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है, सानू की पंजाबी शब्द है। जब भी गॉसिपिंग शुरू हो, कई बार क्या होता है हम सबकी इधर उधर की सारी बातें करते हैं और एंड में कहते हैं चलो हमें क्या लेना, सानू की हमें क्या लेना, कोई कुछ भी करे, हमने डैमेज कर दिया, हमने सारी बुराई सुन ली, सारी गॉसिपिंग कर ली, लास्ट स्टेट में जब उठने लगते ना टाइम हो गया, चलो हमें क्या लेना, हाँ छोड़ो क्या लेना सानू की। ये चाबी पहले सेंटेंस में लगानी है, आखिरी में नहीं। जब भी गॉसिपिंग शुरू हो किसी भी तरीके की, सानू की पहला सेंटेंस ही होना चाहिए, आखिरी नहीं। आखिरी में लगाया तो यूजलेस है, पहले लगाया तो यूजफुल है। तो ये पहला सेंटेंस होना चाहिए कि सानू की हमें क्या लेना। कई बार क्या होता है कि पर हमें किसी को ऐसे डायरेक्टली भी नहीं कहना क्योंकि उसको एम्बेरेसिंग लगेगा, है ना। तो हमें बहुत ही युक्ति से चलना है, कोई बुराई करे हम उसको बहुत सूक्ष्म रीति से, जिसकी भी बुराई हो उसकी तारीफ करें सच्ची ऑनेस्ट, उसने जो भी हमारे साथ अच्छा किया उस माहौल को परिवर्तन करना है, वो जो बुराई कर रहा है उसकी सोच को भी बदलना है। हमने एक प्रैक्टिस शुरू की हुई वहां पर सभी के साथ कि अगर किसी को कोई भी बुरा लगता है, एक्चुअली मम्मा की किताब पढ़ी थी वहीं से ली गई ये युक्ति, तो कोई किसी की कंप्लेंट लेकर आया सेंटर पे, पहले दो अच्छी बातें बताओ उसके बारे में, तीन अच्छी बातें बताओ, उसके बाद आगे की बात। तो अगर हमें कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं लगता, हम नोटबुक पे लिख सकते हैं उसकी अच्छाइयां पहले। देखना तो पड़ेगा भाई, अपना ही फायदा है हमारा मन इम्प्योर हो रहा है ना। अगर हमें अपनी स्थिति से प्यार है तो पवित्रता से प्यार करना पड़ेगा, और उसी के लिए छोटे छोटे से टिप्स हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इजी। चलो जी अगला है, तो धन पवित्र हो गया मन, अन पवित्र हो गया मन पवित्र, अब लास्ट में बचा है तन, तन की प्योरिटी। जब भी हम तन की बात करते हैं तो उसमें बात आती है हमारे फेवरेट टॉपिक की, जो कि है ब्रह्मचर्य। डिफिकल्ट लगता है, तप है ना, ब्रह्मचर्य तप है। ऐसा कहते हैं ना कि पवित्रता अगर एक मार्ग है तो ब्रह्मचर्य उसका पहला कदम, पवित्रता अगर इमारत है तो उसकी नींव ब्रह्मचर्य। आइडियली अगर हम सोचें कि जो अगर जिस पवित्र धन से हमने पवित्र अन्न शरीर को खिलाया, मन भी पवित्र रखा, तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं काफी हद तक तो शीतल वैसे ही हो जाएंगी, काफी हद तक। बाकी का बचा हुआ काम योग है ना, बाबा के साथ योग, काफी हद तक तो हमारा सब सेटल हो जाएगा। पर क्या होता है जब मन में तूफान आते हैं, योग लगना मुश्किल, बाबा से नजर मिलाना मुश्किल, अपने आप से नजर मिलाना मुश्किल, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए एक जो चीज जो यूजफुल रहती है वो ये है कि हम अपने आप को किसी ना किसी सेवा के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें, किसी ना किसी रीति से सेवा का प्रोजेक्ट भी ऐसा हो जो हमारी कैपेसिटी से थोड़ा सा आउट ऑफ कैपेसिटी हो, थोड़ा ज्यादा हो, जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा हो, हमारे कंफर्ट जोन से हल्का सा बाहर हो। उससे क्या होगा, क्योंकि अब हमें लगता है हमारी कैपेसिटी से बाहर है और हमें करना तो है, तो जो मन बुद्धि उसमें बिजी रहता है, बोलते हैं जो लस्ट है ना, इट इज अबाउट, और लस्ट इज अबाउट यूजिंग द बॉडी फॉर द सेल्फ, फॉर द प्लेजर ऑफ द सेल्फ. सर्विस इज यूजिंग द बॉडी टू सर्व अदर्स. तो इसलिए वह बोलते हैं कि काम को शुभ कामना और फिर श्रेष्ठ भावना, उसको सेवा में लगाओ. तो क्या होगा कि हमें इससे बहुत मदद मिलेगी. जब हम अपने आप को सेवा में, जितना भी हमारे पास फ्री टाइम है, हम अपने निमित्त भाई बहनों को कह सकते हैं कि कोई ना कोई हमें सेवा दीजिए, है ना, कोई ऐसी सेवा लें जो हल्की सी हमारी कैपेसिटी से बाहर, कंफर्ट जोन वाली नहीं, वो तो हम वैसे ही कर लेंगे, है ना, उसमें तो मन बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं. हल्की सी कैपेसिटी के बाहर वाली सेवा वो हम लें, उसमें मन बुद्धि पूरे कल की मुरली में था. सेवा से क्या मिलता है? अगर बाप दादा की और बड़ों की उसमें दुआएं शामिल हैं तो हमें अलौकिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति. जब सेवा से सुख की प्राप्ति होगी तो हम इंद्रिय सुख पर डिपेंडेंट नहीं होंगे. ये बहुत मदद करता है, जो सेवा है ना वो इससे बाहर निकलने में बहुत मदद करेगा. दूसरी चीज कि हमारे पास कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल बॉडी हो, एक फ्रेंड हो, एक ग्रुप हो जिसके साथ हम अपनी दिल की बात शेयर कर सकें. तो जब हमारे पास स्पिरिचुअल एक ग्रुप होता है या बॉडी होता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स. ठीक है, इसके लिए योग का प्रयोग सुबह, बहुत सिंपल, बहुत बार सुना है हमने, बाबा से प्योरिटी की वो किडनी लें, और वो किडनी लेकर रोम रोम में उसको बसाएं. तो क्या होगा कि जो रोम रोम है ना उसके अंदर पवित्रता की धारणा. ठीक है, तो चार चीजें हमने की. पहली थी धन, उसके लिए योग का प्रयोग, आई हैव इनफ. ठीक है, दूसरा किया हमने अन्न, अन्न के लिए योग का प्रयोग क्या था कि सब कुछ बाबा के भंडारे से ले रहे हैं, है ना, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए. तीसरा चीज है मन, उसके लिए योग का प्रयोग है कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, आज मैं जिसको भी देखूंगी त्रिकालदर्शी होकर देखूंगी, नाले की बूंद आज काली नजर आ रही है उसमें कोई शक नहीं, पर ये इटर्नल ट्रुथ नहीं है, है ना. और चौथा है तन, बाबा से वो किरणें लें प्योरिटी की, रोम रोम में बसाएं, फिर देखें कमाल. धीरे धीरे क्या होगा, योग पावरफुल हो जाएगा इसे, और जब योग पावरफुल हो गया तो ब्रह्मचर्य का पालन करना वैसे ही सहज हो गया. तो जो टॉपिक है पवित्रता से प्रेम कैसे किया जाए, तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि प्रेम तब होता है जब कुछ प्राप्ति नजर आए. तो ये जो छोटी छोटी चीजें अगर ये हम करके देखते हैं ना, प्योरिटी की परसेंटेज बढ़ेगी. जब परसेंटेज बढ़ेगी प्योरिटी की, अपने आप प्राप्ति नजर आएगी लाइफ में, और जब वो प्राप्ति नजर आएगी तो प्योरिटी से अपना प्रेम हो जाएगा. ठीक है, ओम शांति.
पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों.
पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों.
तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों.
पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों.
रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी,
उदास चेहरों को जिंदगी दी।
तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुछ।